पाठ 13 अध्याय 10 और 11। हम आज शाम हारून के बच्चों, मूसा के भतीजों नादाव और अबीहू की कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। नादाव और अबीहू पुजारी थे, जो पुजारी पद के अभिषेक के तुरंत बाद तंबू में एक अनुष्ठान में लगे हुए थे, जब अचानक प्रभु की ओर से आग निकली। उनकी महिमा तंबू में थी और उन दो लोगों का दाह संस्कार किया गया। पिछले पाठ के समापन से पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि क्या बात थी जिसने यहोवा को इतना गंभीर कार्य करने के लिए उकसाया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूसा से लेकर हारून, इसराइल के पुरनियों, जनजातीय नेताओं और साधारण इसराइलियों तक, वे इस बात से चौंक गए और चकित हो गए कि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ। आइए लेव्य व्यवस्था 10 को पुनः पढ़ें, क्योंकि पिछली बार जब हम मिले थे तो हम इस अध्याय तक ही पहुंचे थे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 10 पूरा पढ़ें। यहोवा सभी लोगों के विचारों को जानता है, इसलिए हारून को यह बताने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। और जो लोग वहां उपस्थित थे और जिन्हें बाद में इस आश्चर्यजनक त्रासदी के बारे में बताया जाएगा, यह सब किस वजह से हुआ और मूसा ने हारून को यह वचन 3 में सुनाया। लेव्य व्यवस्था 10:3। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा ने कहा था, जो कोई मेरे समीप आएगा वह मुझे पवित्र मानेगा और सब लोगों के सामने मेरा आदर करेगा। इसलिए हारून चुप रहा,
जबकि सतह पर ऐसा लग सकता है कि यह एक प्रक्रियागत उल्लंघन था जिसने यहोवा को इतना क्रोधित किया कि उसने हारून के दो बेटों की जान ले ली। वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस एक चीज पर कदम रखा जिसका उल्लंघन परमेश्वर कभी नहीं होने दे सकता, उसकी पवित्रता। यहोवा कहते हैं, मुझे पवित्र माना जाएगा और खास तौर पर उन लोगों द्वारा जिन्हें मेरे पास आने का अधिकार दिया गया है और जिन्हें सार्वजनिक रूप से सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है, एक उच्च पद जैसे एक पुजारी पर। उन्हें उच्च मानक पर रखा जाना चाहिए ताकि सभी लोगों के सामने मेरा सम्मान किया जाए। यदि पुजारी अपनी पूजा में तिरस्कार और लापरवाही दिखाते हैं तो आम लोग क्या करेंगे। पद 4 में हम पाते हैं कि मूसा ने नादाव और अबीहू के चचेरे भाइयों से उनके शवों को तंबू क्षेत्र से हटाने को कहा। वास्तव में उन्हें शिविर के बाहर के रूप में वर्णित क्षेत्र में ले जाया गया था। पुजारियों को शवों को छूने से मना किया जाता है, हालांकि जब यह कुछ रिश्तेदारों से संबंधित होता है तो इसकी अनुमति होती है। उच्च पुजारी कभी भी किसी शव को नहीं छू सकता, चाहे वह उसकी पत्नी या माता पिता या बच्चों का ही क्यों ना हो। यदि कोई पुजारी किसी शव को छूता है तो वह तुरंत अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध, और उसे शुद्ध होने के लिए एक लंबी शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अपने पुरोहितीय कार्यालय के कर्तव्यों को फिर से शुरू करने में सक्षम होगा। सामान्य परिस्थितियों में हारून के दो छोटे बेटों एलियाजर और ईतामार को अपने भाइयों के शवों से निपटने का काम सौंपा जाता। हालांकि चूंकि उन्हें भी अभी अभी पुजारी के रूप में पवित्र किया गया था, इसलिए इन उद्घाटन बलिदानों में मृतकों के संपर्क में आकर उन्हें अशुद्ध करना अनुचित होता। इसलिए यह काम मीशाएल और एलजाफान को सौंपा गया। मृतक को शिविर के बाहर किसी स्थान पर ले जाना सामान्य बात थी। शवों को इसराइल के शिविर में कहीं भी नहीं रखा जा सकता था ताकि वे शिविर को और उन लोगों को अपवित्र न कर दें जो कब्र के संपर्क में आ सकते हैं। पवित्र शास्त्र पढ़ते समय याद रखने योग्य एक अच्छा नियम यह है कि जितने भी तरीके से कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अशुद्ध हो सकता है, उनमें मृत्यु के संपर्क में आने से अधिक गंभीर और गंभीर कोई तरीका नहीं है। इसलिए जहां भी संभव हो इसे टाला जाता था।
पद 6 और 7 मूल रूप से हारून और उसके दो जीवित पुत्रों को बताते हैं कि वे मृतक के शोक की प्रथागत प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते। वास्तव में उन्हें बताया गया है कि यदि वे अपने परिजनों के निधन पर शोक मनाते हैं तो वे भी मारे जाएंगे, और क्योंकि वे पुजारी हैं और इसलिए पूरे इसराइल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यदि वे शोक में शामिल होते हैं तो पूरा समुदाय ईश्वर के क्रोध के अधीन होगा। क्या यह सब आपको थोड़ा कठोर लगता है? उस परमेश्वर का क्या हुआ जिसने दया करके इन लोगों को फिरौन के हाथों से बचाया था? वह क्षमा कहाँ है जिसने हारून और उसके बेटों को पुजारी बनने में सक्षम बनाया, भले ही उन्होंने कुछ समय पहले ही सोने के बच्छरे का निर्माण और उत्सव मनाया था? एक परमेश्वर जो जीवन को इतना महत्व देता है, वह कैसे न्याय और दैवीय दंड के एक पल में जीवन को छीन सकता है? यह ईश्वर के गुणों का वह पक्ष है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। यह ईश्वर के गुणों का वह पक्ष है जिसे नेक नियत पादरियों ने पीछे धकेल दिया है, जो चाहते हैं कि लोग ईश्वर की दया और प्रेम पूर्ण दयालुता को देखें ताकि वे उनकी ओर आकर्षित हों। और यह ईश्वर का वह पक्ष है जिसके बारे में चर्च का अधिकांश हिस्सा कहता है कि अब इसका अस्तित्व ही नहीं है, कि यह एक पुराना नियम व्यवस्था थी, कि नया नियम व्यवस्था में नया नियम के ईश्वर ने किसी तरह अपने क्रोध और न्याय को पीछे छोड़ दिया है। जिस ईश्वर के बारे में हमें बार बार बताया जाता है वह कभी नहीं बदलता, बदल गया।
खैर, यह कहने की जरूरत नहीं है कि बाइबल में हम जो पढ़ते हैं वह 14 शताब्दियों के दौरान इब्रानियों के बीच हुई घटनाओं और बाइबल में वर्णित सैकड़ों पात्रों का एक छोटा सा अंश मात्र है। इसलिए हमें उन बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जो हमारे लिए दर्ज की गई हैं, क्योंकि वे हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए हैं। इसलिए जब हमने पुराने नियम में परमेश्वर के न्याय के बारे में एक चौंकाने वाला विवरण देखा है, तो आइए देखें कि क्या परमेश्वर का वही गुण जीवित और अच्छा है, या यह वास्तव में अतीत की बात है जब हम नए नियम के समय में प्रवेश करते हैं। अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4 खोलिए। हम पद 32 से पढ़ना शुरू करेंगे और अध्याय 5 तक पढ़ना जारी रखेंगे। हम अध्याय 5 का 11 पर समाप्त करेंगे।
प्रेरितों के काम 4 का 12 से 5 का 11 पढ़ें। यहां पर यहोवा के प्रत्यक्ष न्याय के रूप में दो लोगों की मृत्यु का विवरण है। उसने उन्हें मार डाला, उन्हें किसी सांसारिक अधिकारी द्वारा मृत्यु दंड नहीं दिया गया, और ऐसा लगता है कि यह सब वहां उपस्थित प्रेरितों और शिष्यों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। हमें याद रखना चाहिए कि सभी विवरणों के अनुसार हनन्याह और सफीरा आस्तिक थे। वे यहूदी थे जो यह मानने लगे थे कि यीशु उद्धारकर्ता और प्रभु थे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह कहे कि वे ढोंगी थे, या कि उन्होंने केवल यह सोचकर खुद को मूर्ख बनाया था कि वे विश्वास करते हैं। इसीलिए हनन्याह और सफीरा पति और पत्नी ईसाई थे, पवित्र आत्मा उनके भीतर रहता था, ठीक वैसे ही जैसे उनके सभी ईसाई भाई बहनों के साथ रहता था।
यहां क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो वे भी बाकी लोगों की तरह अपनी संपत्ति बेचकर और उससे मिलने वाले पैसे को जरूरतमंद विश्वासियों को देकर इसमें शामिल होना चाहते थे, और वे निश्चित रूप से इसके प्रति ईमानदार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति बेची और उन्होंने उससे मिलने वाले पैसे को चर्च के नेतृत्व को दिया, हालांकि उन्होंने थोड़ा झूठ बोला और उसमें से कुछ पैसे वापस ले लिए। अब आइए एक पल के लिए रुकें और इस पर विचार करें। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी जो उनके अधिकार में थी, थोड़ा अपने लिए रख लिया और बाकी, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा हिस्सा, चर्च को दे दिया। सच है यह आय का 100% नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत उदारतापूर्ण काम था, है ना? मुझे कुछ बताइए, यहां कितने लोग अपना घर बेचेंगे और हर पैसा चर्च को देंगे? यहां कितने लोग अपनी संपत्ति का एक मूल्यवान टुकड़ा बेचेंगे और उसका 90% चर्च को देंगे?
सतही तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्दा उदारता का नहीं था, बल्कि मुद्दा यह था कि हनन्याह और सफीरा ने इसके बारे में झूठ बोला था, और इसी कारण परमेश्वर ने उन पर मृत्युदंड की सजा सुनाई।
या क्या यह वास्तव में मामला था? बाइबल में हम कितनी बार देखते हैं कि झूठ बोलने के पाप के लिए परमेश्वर ने लोगों को मार डाला? क्या पतरस ने झूठ नहीं बोला था और खुद यीशु को अस्वीकार नहीं किया था 3 बार, फिर भी उसे नहीं मारा गया? वास्तव में तोरह झूठ बोलने के पाप के लिए शारीरिक मृत्यु की मांग नहीं करता, यहां तक कि परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए भी नहीं। तो यहां प्रेरितों के काम में नए नियम में क्रोध के परमेश्वर को प्रेम के परमेश्वर द्वारा प्रतिस्थापित क्यों किया गया है? यहां हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमने हाल ही में सीखा है। जब कोई इसराइली अपना बलि का जानवर अपनी भेंट तंबू में लाया और उसे परमेश्वर को भेंट किया, तो वह संपत्ति, वह जानवर परमेश्वर की संपत्ति बन गई। बलि प्रथा में यह औपचारिक रूप से सेमीरवाह पर परमेश्वर की संपत्ति बन गई। पशु के सिर पर हाथ रखना यह दर्शाने के लिए कि यह जानवर वास्तव में भेंट था और इसे यहोवा को सौंपा जा रहा था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वामित्व का हस्तांतरण वास्तव में कब हुआ? बाद में रब्बी कहते थे कि यह वह क्षण था जब उपासक ने जानवर के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया और वह परमेश्वर की संपत्ति बन गई। जो भी हो, यहोवा को भेंट के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द पवित्र संपत्ति है। हमने पवित्र संपत्ति पर चोरी चर्चा की है और हमें यह भी दिखाया गया है कि परमेश्वर की पवित्र संपत्ति का उल्लंघन करना एक बहुत गंभीर पाप है। इसकी कुंजी यह है कि यहोवा ने पवित्र संपत्ति को पवित्र माना। जब हनन्याह और सफीरा ने संपत्ति बेचने और सारा पैसा प्रभु को देने का फैसला किया, तो यह पवित्र संपत्ति बन गई। जिस तरह एक इसराइली को बलि के लिए एक निश्चित जानवर लाने की जरूरत नहीं थी, यानी कुछ मामलों में जानवर की प्रजाति कुछ सीमाओं के भीतर उपासक की पसंद थी और अन्य मामलों में उसके झुंड में से कौन सा जानवर उसकी अपनी पसंद थी, हनन्याह और सफीरा पर अपनी संपत्ति बेचने और पैसे दान करने का कोई दायित्व नहीं था। यह पूरी तरह से उनका विचार और उनकी पसंद थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने यह विकल्प चुना तो स्थिति बदल गई। एक बार जब उन्होंने प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने संपत्ति बेच दी और उनके हाथ में पैसा आ गया, तो एक महत्वपूर्ण बात हुई। इसमें पवित्रता का तत्व इसलिए जोरा गया क्योंकि इस प्रक्रिया में किसी बिंदु पर यह पवित्र संपत्ति बन गई। हम कहेंगे कि उन्होंने परमेश्वर से अपना कुछ पैसा वापस ले लिया। गलत। एक बार जब यह पवित्र संपत्ति बन गई तो यह सब उनकी थी। उन्हें इसमें से किसी पर भी कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह अब उनकी नहीं थी। परमेश्वर ने अपनी संपत्ति के साथ क्या करना चुना, यह उनका विशेषाधिकार था। उन्होंने जो किया वह परमेश्वर को लूटना था। उन्होंने परमेश्वर की पवित्र संपत्ति का हिस्सा लिया, जो परमेश्वर की पवित्रता का एक स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ऐसा लगता है कि हनन्याह और सफीरा को बहुत ऊंचे और सख्त मानक पर रखा गया था, है ना? खैर, बेशक वे थे, क्योंकि मसीहा यीशुआ के विश्वासी होने के नाते वे परमेश्वर के करीब थे। पत्रस ने एक पत्रस 4:17 में कहा, न्याय परमेश्वर के घराने से शुरू होता है। याकूब ने याकूब 3:1 में कहा, हम जो सिखाते हैं उनका न्याय अधिक कठोरता से किया जाएगा। और यीशु ने लूका 12:48 में कहा, जिसको बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। फिर 1 पत्रस 2:9 में यह है, 1 पत्रस 2:9, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। संक्षेप में, हनन्याह और सफीरा का परमेश्वर के सामने वही दर्जा था जो हारून के बेटों नादाव और अवीहू का था। वे सभी याजक थे। हनन्याह और सफीरा महायाजक यीशु के लिए समान याजक थे, ठीक वैसे ही जैसे नादाव और अवीहू महायाजक हारून के लिए समान याजक थे। और याजकों के रूप में वे परमेश्वर के निकट थे। उन्हें यहोवा के साथ निकटता और संगति की एक विशेष स्थिति में रखा गया था। नादाब और अवीहू को यहोवा की उपस्थिति, जंगल के तंबू अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति थी, जैसा कि केवल याजकों को ही मिल सकता था। हनन्याह और सफीरा के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति थी, जैसा कि केवल वे ही कर सकते थे जिन्हें यीशु पर भरोसा करके याजक बनाया गया था। और जब इनमें से किसी ने परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन किया तो यह बिना किसी बहाने के था। और क्योंकि वे सभी परमेश्वर के निकट होने के इतने विशेषाधिकार प्राप्त थे, इसलिए उन पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदारी थी जो नहीं थे।
यह कोई रूपक नहीं है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्वर सिद्धांत है जो तोरह में स्थापित है और स्वाभाविक रूप से नए नियम में भी जारी है। मैंने इस मामले से निपटने में इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि यह आप और मुझे प्रभावित करता है। यह हम पर सटीक रूप से लागू होता है। हम हनन्याह और सफीरा जैसी ही स्थिति में हैं। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने एक आस्तिक से बेहतर, उच्च या निकट स्थिति में नहीं है और कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने एक आस्तिक से अधिक जिम्मेदारी की स्थिति में नहीं है, न ही ईश्वर के सामने उच्च मानक पर खड़ा है। लेकिन और यह मुश्किल हिस्सा है, हम सभी जो यीशु में विश्वास को स्वीकार करते हैं ईश्वर की पवित्रता का उल्लंघन करने की स्थिति में भी हैं, जैसा कोई अन्य नहीं कर सकता, और ऐसा करने की सजा सबसे गंभीर प्रकृति की हो सकती है।
फिर भी हम आधुनिक ईसाई आम तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। हम सिर्फ इस बारे में सोचना चुनते हैं कि हम परमेश्वर के निकट होने से कितना लाभ या समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समय में अनुग्रह का मतलब है कि अब आज्ञाकारिता की कोई जरूरत नहीं है। अब आराधना का मतलब है कि बैठकर दूसरे लोगों को करते हुए देखना। अब उद्धार का मतलब है कि हम वास्तव में यहोवा का अपमान नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो कोई परिणाम नहीं होगा। धार्मिकता का मतलब है कि अब हमें दिखाया जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से क्या सही है और क्या गलत, कि परमेश्वर के नियम और आदेश अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। मसीह में स्वतंत्रता का मतलब है कि अब हमारे पास यह विकल्प है कि हम परमेश्वर द्वारा निर्धारित जीवन शैली अपनाएं या फिर बस दुनिया की तरह जिए, इसमें यीशु को भी शामिल करें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस सोच को पुष्ट करता हो। फिर भी भले ही उन आधारों को स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, यह आधुनिक ईसाई धर्म के अधिकांश भाग के लिए वास्तविक संचालन पद्धति है। जाहिर है हनन्याह और सफीरा की सोच भी बिल्कुल वैसी ही थी।
जब मैंने इस पाठ का अध्ययन किया और इसके लिए प्रार्थना की, तो अंत में बुद्धि के कुछ शब्द मुझ पर हथौरे की तरह गिरे, मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। यह वाक्यांश यिर्मयाह 51:45 से है और बाद में प्रकाशित वाक्य 18 में उद्धृत किया गया है। लेकिन पूरी आयत सुने, यिर्मयाह 51:45, उसमें से निकल आओ मेरे लोगों, अपने जीवन के लिए भागो, यहोवा के भर के हुए क्रोध से भागो। परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर बरसने वाला है और कोई भी राष्ट्र या मंडली जिसने परमेश्वर के वचन के बजाय सिद्धांतों पर अपना विश्वास रखने का फैसला किया है, वह उस क्रोध के अधीन होने वाला है। यिर्मयाह हमें इससे दूर भागने की चेतावनी देता है।
पद 8 में हम लेव्य व्यवस्था के लिए एक दुर्लभ घटना देखते हैं। यहोवा सीधे हारून से बात करता है। आम तौर पर परमेश्वर जो कुछ भी हारून को बताना चाहता है वह मूसा के जरिए होता है। तो हमें इससे क्या लेना चाहिए? परमेश्वर हारून से जो कहना चाहते हैं वह उस पर विशेष जोर देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने अपेक्षाकृत छोटी कंपनी के लिए भी काम किया है वह इस पद्धति को समझता है, यानी बिग बॉस आमतौर पर कंपनी के दूसरे नंबर के अधिकारी के माध्यम से कर्मचारियों से बात करता है। और इसका एक कारण यह भी है कि उन दुर्लभ अवसरों पर जब बिग बॉस किसी कर्मचारी से सीधे बात करता है तो कर्मचारी विशेष ध्यान देने वाला होता है, और यह घटना आमतौर पर कुछ हद तक डरपोक घबराहट के साथ होती है, ये देखते हुए कि यहोवा हारून से जो बात करने वाला है वह हारून के पहले और दूसरे जन्मे बेटों की भयानक मौत के तुरंत बाद होने वाली है। आप शर्त लगा सकते हैं कि हारून पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। हारून को बताया गया है कि अपने पुरोहितीय कार्य को करने से पहले किसी भी पुजारी को कोई नशीला पेय नहीं पीना चाहिए। इब्रानी में यह याइन शब्द है जिसे सामान्यतः शेखर शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। याइन का अर्थ है शराब और शेखर का अर्थ है मजबूत नशीला पेय। याइन शराब बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम शराब के बारे में सोचते हैं, अपेक्षाकृत कम अल्कोहल सामग्री के साथ किण्वित अंगूर। शेखर उस शराब को संदर्भित करता है जिसे लंबे समय तक किण्वित होने दिया गया है और इसलिए इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक है, और यह अनाज से बने बियर और एल्स को भी संदर्भित करता है। शराब न पीने का यह निर्देश विशेष रूप से उन कार्यों से जुड़ा हुआ है जिसके तहत पुजारियों को तंबू के अभयारण्य मिष्कान बैठक के तंबू में प्रवेश करना चाहिए। अब क्या यह एक नया कानून था जो पिछले निर्देशों को रद्द कर देता था? यह केवल पुरोहित वर्ग के लिए एक निर्देश है कि उन्हें प्रभु के समक्ष अपने सभी पुरोहितीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी तरह से संयमित रहना है। अब क्या इसका मतलब यह है कि हारून के बेटों नादव और अबीहू के साथ जो हुआ उसका शराब के नशे से कोई संबंध हो सकता है? शायद किसी को कुछ ऐसा मानना होगा जो शास्त्र में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि नादव और अबीहू नशे में थे, और इसलिए जब वे अनाधिकृत तरीके से अग्नि द्वारा एक अजीब धूप बत्ती और अनाधिकृत स्थान, परम पवित्र स्थान, एक ऐसा स्थान जहां उन्हें कभी जाने की अनुमति नहीं थी, में परमेश्वर के पास पहुंचे, तो वे ठीक से सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन यह ज्ञात है कि दुनिया के कई मूर्ति पूजक धर्मों के पुजारी अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले ही काफी शराब के नशे में धुत हो जाते थे। दुनिया के कई धर्म अपने धार्मिक समारोह के हिस्से के रूप में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो शायद नादाव और अबीहू इसके लिए दोषी थे, तो इसलिए ड्यूटी पर जाने से ठीक पहले शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने वाला यह नियम यह स्पष्ट करने के लिए है कि यहोवा के अनुयायियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शराब पीना कभी भी इजरायली पुरोहितों के लिए एक समस्या थी, कभी कभी गलत निर्णय लेना। हां, शराब पीना नहीं, मुझे लगता है कि इस घटना का संबंध परमेश्वर द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताने से अधिक है कि इन पुरोहितों, जिनमें महायाजक भी शामिल हैं, को अपने अनुष्ठानों में कोई छूट नहीं थी, परमेश्वर के स्पष्ट आदेशों से थोड़ा सा भी विचलन कठोरतम अनुशासन से पूरा किया जा सकता था, जैसा कि नादाव और अबीहू घटना से प्रदर्शित होता है। किसी भी तरह से हारून को व्यक्त किया जा रहा विचार यह है कि स्पष्ट सोच और विवरण पर ध्यान देना आवश्यक था, न केवल संभावित उल्लंघनकर्ता को निर्माता के हाथों एक भयानक मौत से बचाने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि पुरोहितों के पास इज़राइल के लोगों के लाभ के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य थे। हारून के दो बेटों की मौत पर वापस जाए बिना आइए याद करें कि यहोवा ने क्या कहा कि नादव और अबीहू ने जो किया था उसमें असली समस्या क्या थी। पद 3 में उसने कहा, और सभी लोगों के सामने मेरी महिमा होगी। पुजारी शिक्षक होने के साथ साथ अनुष्ठानों के अधिकारी भी थे, और इससे भी बढ़ाकर वे ईश्वर के निकट थे। और वचन यह स्पष्ट करता है कि शब्दों से कहीं ज्यादा शिक्षक के कार्य थे जो उनके अनुयायियों को प्रभावित करते थे। छात्र ने अपने शिक्षक को जो करते देखा, संभवतः वही छात्र ने भी किया। इसके अलावा यह पुजारी का काम था। मैं यहां तक कहूंगा कि यह उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था, जैसा कि पद 10 में कहा गया है, पवित्र और सामान्य के बीच और स्वच्छ और अशुद्ध के बीच अंतर करना। और जबकि अक्सर यह अंतर एक सरल मामला था, अन्य समय में यह इतना आसान नहीं था। पुजारियों ने ब्रह्मांड के राजा की सेवा में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, और किसी प्रकार की लापरवाह त्रुटि के कारण परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए विचारों की गंभीरता आवश्यक थी, खासकर जब यह उनकी पवित्रता को खतरे में डालता था। मुझे संदेह है कि इस कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी थोड़े नशे में रहे होंगे, और भले ही आप में से कुछ लोगों के लिए यह बहुत पहले की बात हो, लेकिन आपको निस्संदेह याद होगा कि समझौता करने और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको नशे में धुत होने की जरूरत नहीं है, जो आप आम तौर पर तब नहीं करते जब आप शराब नहीं पीते या ड्रग्स नहीं लेते। समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग प्रभु की प्रत्यक्ष सेवा में सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं, पादरी बनना, पढ़ाना, नेतृत्व करना, मंत्री बनना, जो भी हो, उन्हें उस गतिविधि को शुरू करने से पहले नशीले पेय पदार्थ नहीं पीने चाहिए, क्योंकि आप यहोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपकी लापरवाही न केवल आपको परमेश्वर के लिए अपमानजनक कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो कि परम पावन और आपकी भलाई के लिए खतरनाक है, बल्कि यह दूसरों को यह विश्वास दिला सकती है कि ऐसी लापरवाही ठीक है। हालांकि मुझे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह किसी भी तरह से यह निर्देश नहीं है कि कोई व्यक्ति शराब या कोई अन्य मादक पेय नहीं पी सकता है। वास्तव में पूरी बाइबल शुरू से अंत तक
ये स्पष्ट करती है कि याइन शराब ईश्वर की ओर से एक उपहार है, ये खुशी का प्रतीक है, नशे का नहीं। ये निश्चित रूप से कुछ समारोहों और अवसरों के दौरान मूड को हल्का करने के लिए मध्यम मात्रा में उपयुक्त है, फिर भी पूरी तरह से नशे में धुत होना कभी भी मुख्य रूप से स्वीकृत नहीं है, क्योंकि यह निर्णय लेने को प्रभावित करता है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ईश्वर के करीब हैं। पुराने दिनों में पुजारी और नए समय में विश्वास करने वाले, हमें उन लोगों की तुलना में अधिक सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर के करीब नहीं है, क्योंकि हम जिस मानक को मानते हैं वह बहुत अधिक है। पद 12 से शुरू करते हुए मूसा कमोबेश एक जांच सूची पर जा रहा है कि याजकों को क्या करना चाहिए या कर रहे हैं। हारून के बेटों के साथ जो कुछ हुआ उसे देखते हुए यह शायद एक बहुत अच्छा विचार था। मूसा ने सुनिश्चित किया है कि मिंचाह भेंट, अनाज भेंट, अनुष्ठान उसी तरह पूरा हो जैसा कि उसे होना चाहिए था। इस मामले में आटा अखमीरी होना चाहिए था और इसे याजकों द्वारा तंबू के आंगन में खाया जाना था, या अधिक शाब्दिक रूप से वेदी के पास, जिसका अर्थ है पीतल की वेदी। यहां दो बातें बताई जा रही हैं। पहली यह कि नादाव और अवीहू से जुड़ी घटना ने कुछ भी नहीं बदला है, अनुष्ठान और उनके उद्देश्य वही हैं। दूसरा यह कि हारून और उसके शेष बेटे अभी भी पुजारी का पद संभाल रहे हैं, यह उनसे नहीं छीना गया है।
इसके बाद होम बलि के बारे में और अधिक चर्चा की जाती है और उन्हें कैसे किया जाना चाहिए इस बारे में याद दिलाया जाता है। हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले से ही पिछले पाठों में इन विशेष अनुष्ठानों का कुछ विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं।
अब दिलचस्प बात यह है, पद 16 से शुरू करते हुए, जब मूसा ने शुद्धिकरण की भेंट हत्तात की स्थिति के बारे में पूछा तो वह काफी क्रोधित हो गया, क्योंकि जैसा कि उसे डर था, नादाव और अवीहू ने जो लापरवाही दिखाई और जिसकी अंतिम कीमत चुकाई, उसके कारण हारून के शेष दो बेटों इलियाजर और इथामार ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन जाहिर तौर पर उतना गंभीर नहीं। उन्होंने हत्तात भेंट के मांस को अनुचित तरीके से खाया। उन्हें इसे केवल पवित्र परिसर के अंदर ही खाना चाहिए था, यानी तंबू के आंगन के अंदर, लेकिन इसके बजाय उन्होंने परमेश्वर के विशिष्ट आदेश की अनदेखी की और इसे कहीं और खाया। इस उल्लंघन के लिए उन्हें क्यों नष्ट नहीं किया गया, मुझे नहीं पता। रोमियो 9:15 में पौलुस ने निर्गमन 33 से सीधे उद्धरण दिया, जब वह इसी तरह के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है, रोमियो 9:15, क्योंकि वह यहोवा मूसा से कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया करूंगा और जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया करूंगा। हम ऐसे मामलों पर परमेश्वर के निर्णयों पर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है। उसने निर्णय लिया, निर्णय लेना उसका विशेषाधिकार है और बस यही है।
एक अंतिम मुद्दा और हम अध्याय 11 पर आगे बढ़ेंगे। अध्याय 10 के अंत में पद 19 और 20 में हमें हारून और मूसा के बीच यह कुछ हद तक समझने में मुश्किल बातचीत मिलती है, जिसमें हारून इस बारे में बात करता है कि उसके साथ क्या हुआ है और अगर उसने और उसके बेटों ने हत्तात को उसी तरह खाया होता जैसा कि आदेश दिया गया था तो क्या यहोवा उसे स्वीकार करता। यह एक अजीब सवाल लगता है ना। आखिरकार सवाल यही लगता है, अच्छा अगर मैंने हत्तात को पूरा किया होता और मांस को उसी तरह खाया होता जैसा कि आदेश दिया गया था तो क्या यह परमेश्वर को स्वीकार्य होता। लेकिन वास्तव में यहां इसका मतलब यह नहीं है। तो यह सब क्या था? शोक में डूबे इब्रानी परिवारों के लिए कुछ समय के लिए भोजन न करना आम बात थी। इस मामले में मामला विशेष रूप से समस्याग्रस्त था, क्योंकि इसमें केवल साधारण भोजन शामिल नहीं था, यह पवित्र भोजन था, क्योंकि यह परमेश्वर की पवित्र संपत्ति से पुजारियों के लिए विशेष रूप से अलग रखा गया हिस्सा था। जाहिर है कि पुजारियों को लगा कि वे मुश्किल में फंस गए हैं। क्या वे अपने लिए निर्धारित मांस का हत्तात हिस्सा खाते हैं या अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु और आवश्यक शोक अनुष्ठानों के कारण वे इसे पूरा नहीं खाते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से गलत चुनाव किया, क्योंकि उन्हें अपने जले हुए रिश्तेदारों के लिए शोक न करने के लिए कहा गया था, लेकिन अपने स्वयं के कारणों से मूसा दुविधा को समझता हुआ प्रतीत हुआ
और परमेश्वर ने मूसा के दृढ़ संकल्प को स्वीकार कर लिया कि पुजारी इस दुस्साहस के लिए कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे यह बताना होगा कि हारून ने पूछा था, क्या यहोवा इसे स्वीकार करेगा? और फिर हमें बताया गया कि मूसा ने इसे स्वीकार किया। याद रखें कि मूसा पूरे बाइबल इतिहास में अद्वितीय था। मूसा ने परमेश्वर के लिए बात की। अगर मूसा ने ऐसा कहा तो ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने ऐसा कहा हो, और यह परंपरा नहीं है, यह है यहोवा की ओर से प्रत्यक्ष धर्मशास्त्रीय निर्देश है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 11।
अध्याय 11 लेव्य व्यवस्था के एक नए खंड की शुरुआत है, जिसके लिए प्रभु ने निर्गमन के 20वें अध्याय से मंच तैयार किया है, क्योंकि लेव्य व्यवस्था 11 से शुरू होकर अध्याय 16 तक हमें अनुष्ठान शुद्धता के नियम बताए गए हैं। उचित रूप से यह आहार के नियमों से शुरू होता है, जिसे इब्रानी में कशरुत कहा जाता है। हम इसे सामान्य रूप से कोशेर खाने के रूप में जानते हैं। पिछले अध्याय अध्याय 10 पद 10 में हमें बताया गया था कि शायद याजकों का प्राथमिक कर्तव्य पवित्र और सामान्य, स्वच्छ और अशुद्ध के बीच अंतर करना है। आपको याद होगा कि यह कथन पुरोहिताई कर्तव्यों को निभाने से ठीक पहले शराब न पीने के संदर्भ में दिया गया था, क्योंकि उचित विवेक और अच्छे निर्णय के लिए स्पष्ट मन आवश्यक था, ताकि यहोवा की पवित्रता का उल्लंघन न हो और उसका दिव्य प्रतिशोध न हो।
अध्याय 11 को साथ में पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। यहोवा ने इसराइल के लिए जो जीवन शैली निर्धारित की है, उसमें शुद्धता और पवित्रता से बढ़कर कोई और महत्वपूर्ण बात नहीं है, और वह अध्याय 11 की आयत 45 में इसका सारांश देता है। मैं यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से तुम्हारा परमेश्वर होने के लिए लाया हूं, इसीलिए तुम्हें पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तोरह इसराइल के लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा परिभाषित पवित्र और शुद्ध जीवन शैली का आह्वान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तोरह इसराइल को दिया गया था और किसी और को नहीं। ये सभी कानून और आदेश और अनुष्ठान और बलिदान किसी के लिए नहीं थे, वे इसराइल के लिए आरक्षित थे। अब इससे पहले कि आप में से कुछ लोग उस अंतिम टिप्पणी के बारे में बहुत चिंतित हो जाएं, कृपया समझें कि उस सरल कथन में जो दिखता है उसे कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, विदेशियों को निश्चित रूप से इसराइल में शामिल होने की अनुमति थी, और एक विदेशी जो आधिकारिक रूप से इसराइल में शामिल हो जाता था उसे इसराइली माना जाता था। यहोवा ने इसराइलियों के दो वर्ग नहीं बनाए, प्राकृतिक रूप से जन्मे और गोद लिए गए। उसकी नजर में सभी को समान माना जाता था और उन्हें एक ही वाचा और न्याय प्रणाली के तहत काम करना था, और यह सिद्धांत सीधे तौर पर हमारी स्थिति पर लागू होता है, गैर यहूदियों के रूप में और नए नियम के समय में इसराइल के साथ हमारे रिश्ते पर। इसलिए जैसा कि मैंने एक से अधिक अवसरों पर एक आस्तिक के इसराइल के साथ रिश्ते को संबोधित किया है, और निस्संदेह फिर से ऐसा करूंगा, अभी के लिए बस इस सच्चाई को सच मान लें कि तोरह को विशेष रूप से चुने गए लोगों के रूप में इसराइल को दिया गया था।
और रोमियों 11 में स्पष्ट रूप से और जोरदार ढंग से कहा गया है कि अन्य जाति विश्वासियों को इसराइल में जोड़ दिया गया है। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर विश्वासी, अन्य जाति विदेशी इसराइल के साथ एक हो गए हैं। अब हम जिस विषय पर गहराई से विचार करेंगे वह यह है कि क्या कोशेर खाने को यीशु ने समाप्त कर दिया था या अभी भी प्रभावी है, और यदि यह अभी भी प्रभावी है तो इसका पालन करने के लिए कौन बाध्य है। यह एक जोखिम भरा विषय है। प्रख्यात विद्वानों, यहूदी और गैर यहूदी, आस्तिक और धर्मनिरपेक्ष ने इस अक्सर भावनात्मक रूप से आवेशित विषय पर व्यापक दृष्टिकोण सुझाए हैं। हालांकि इससे पहले कि हम उन अशांत जल में गोता लगाएं, मुझे कशरुत के एक पहलू पर चर्चा करने दें जो इतना विवादास्पद नहीं है, और यह है कि इब्रानी आहार शुद्धता और पवित्रता के मामले में केंद्र बिंदु था। तोरह ने आहार को जितना महत्वपूर्ण बताया है, कुछ लोग तर्क देंगे कि यहूदी धर्म ने खाने के बारे में संक्षिप्त शास्त्रीय नियमों से कहीं आगे बढ़कर इसे एक खाद्य पंथ बना दिया है।
फिर भी ये नियम जिनका हम लय व्यवस्था 11 में अध्ययन करेंगे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें व्यवस्था विवरण 14 में दोहराया गया है, हालांकि कुछ अलग जोर के साथ। हम शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के बारे में बहुत कुछ बात करने जा रहे हैं, इसलिए उन अवधारणाओं की समीक्षा करना सार्थक है। जिन्हें एक साथ लिया जाए तो बाइबल के अर्थ में उनका क्या अर्थ है? मैं बाइबल के अर्थ में कहता हूं क्योंकि मैं जो समझाऊंगा वह जरूरी नहीं कि आधुनिक यहूदी धर्म या सिद्धांत आधारित ईसाई धर्म को दर्शाता हो, यानी यह जरूरी नहीं कि परंपरा और रीति रिवाजों को दर्शाता हो। यह शास्त्र का दृष्टिकोण है।
हम अगले सप्ताह अपना अध्ययन शुरू करने के लिए उस विषय पर काम करेंगे।